नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता।
दोस्तों आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मई का अंक लेकर हाजिर हैं। श्रोताओं, वर्ष 2025 के शुरुआती 100 दिनों में केंद्र सरकार ने वक्फ से जुड़े कानून में बदलाव कर मुस्लिम समाज को पारदर्शिता के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाया। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के अभाव के कारण 21,000 से ज्यादा मुकदमे देश भर में हो गए थे। वक्फ को लंबे समय तक देश में धार्मिक नजरिए से परिभाषित किया जाता रहा, जबकि वक्फ सिर्फ संपत्ति प्रबंधन, शासन और प्रशासन का मामला है। भारत की अलग अलग अदालतें कई स्तर पर वक्फ को वैधानिक निकाय बता चुकी हैं। ऐसे में देश भर में व्यापक मंथन, संसदीय समिति में विस्तृत परिचर्चा और लंबी बहस के बाद वक्फ से जुड़ा विधेयक पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, कुशल और गरीबी को कम करने पर केंद्रित करके इसे ठीक करना है। साथ ही विधेयक ये भी सुनिश्चित करता है कि वक्फ की संपत्ति और धन का उपयोग गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाए। इसके अतिरिक्त विधेयक में गैर मुस्लिमों की भूमि पर विवादों को रोकने के उपाय शामिल हैं ताकि कल्याणकारी प्रयासों में बाधा न आए। वक्फ से जुड़े कानूनों में क्रांतिकारी सुधार ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा है। साथ ही बीमा और पेंशन से जुड़ी 3 जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के सबसे बड़े सुरक्षा कवच के 1 दशक पूरा होने पर एक विशेष स्टोरी भी इस अंक में शामिल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार।
आज जो योजना लाया हूँ उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आपके भीतर की शक्ति हो, आपकी अपनी शक्ति हो, आप अपना गौरव के साथ बुढ़ापा भी बिता सको। अगर आपकी आवश्यकता 1,000 रुपए की पेंशन है तो उसकी स्कीम है, 2,000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 3,000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 4,000 चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 5,000 चाहते हो उसकी स्कीम है।
श्रोताओ, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पंडवानी गायिका उषा बार्ले, संसद के बजट सत्र के कामकाज का लेखा जोखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। पत्रिका के इनसाइट विशेष सामग्री और बैक कवर पर 7 मई को मनाए जाने वाले सीमा सड़क संगठन दिवस को भी समाहित किया गया है।
दुनिया के सबसे प्राचीन जीवंत शहर के रूप में काशी सनातन आस्था के सबसे अहम केंद्र रूप में हजारों वर्षों से ख्यात रही है। प्राचीनता के इसी वैभव को अपने हृदय में समेटे काशी अब प्रगतिशीलता के पथ पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसके केंद्र में 2014 में लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। जब यहाँ पहली बार आने पर उन्होंने कहा था, मुझे न किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। देश में विरासत के साथ विकास की मॉडल बनकर उभरी काशी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर 3,880 करोड़ रुपए की सौगातें दी। काशी ने पिछले 10 वर्ष में विकास की एक नई गति पकड़ी है, आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और उज्जवल बनने की दिशा में मजबूत कदम भी बढ़ाए हैं। 2014 में यहाँ से सांसद और फिर देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अपने 50वें वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी से अपने लगाव के साथ शहर की इस परिवर्तन यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि इनमें आने वाले समय में वाराणसी और आसपास के जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा तो वहीं नल से जल जैसी सुविधाओं के लागू होने से लोगों का जीवन आसान होगा। इन परियोजनाओं के शुरू होने से विकसित पूर्वांचल की राह आसान होगी। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की सभी जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नए भारत के भरोसे की वो कहानी है जिसने नव उद्यमियों के सपनों को सींचकर यथार्थ में बदला है। ایسے لوگ جن کے پاس مادہ تو تھا لیکن اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے پونجی نہ تھی. ان کی آکانکشاؤں کو بھروسے کے ساتھ آرتھک سمبل دینے والی یہ یوجنا بیتے دشک میں نو ادیمیوں کے لیے لائف لائن بن کر آئی ہے. اس یوجنا کا ایک دشک پورا ہوا تو دیش کی یووا آکانکشاؤں پر وشواس کی کچھ سچی کہانیاں خود اس کے لابھارتھیوں نے پردھان منتری نریندر مودی کو سنائی. پردھان منتری نریندر مودی نے لابھارتھیوں سے سمواد میں کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے کہ اتم کھیتی، مدھم ویاپار اور کنشٹھ نوکری نوکری کو آخری گنتے تھے. دھیرے دھیرے سماج کی منوستھتی بدلتی گئی اور نوکری سب سے پہلے آ گئی، ویاپار مدھم ہی رہا اور لوگ یہاں تک پہنچ گئے کھیتی تو سب سے آخری رہ گیا. آج بھارت کے یووا کے پاس جو انٹرپرینیور سکل ہے اگر اسے بھروسے کا ساتھ مل جائے تو بہت بڑے پرینام لاتا ہے. بیتے دس ورش میں پی ایم مدرا یوجنا نے 52 کروڑ لون دے کر نہ صرف پونجی کی بادھا دور کی بلکہ سپنوں کو ساکار کر ان کی زندگی بھی بدلی ہے. پی ایم مدرا یوجنا میں ابھی تک 33 لاکھ کروڑ روپے سے ادھک کے 50,000 روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک کے گارنٹی مکت لون دیے گئے ہیں. ایسے لوگوں کو لون ملے جن کی بینکوں تک پہنچ نہیں تھی. قریب قریب آدھے لون ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کو ملے ہیں. یوجنا کے الپ سمے میں بہت سے لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے کیونکہ یووا اب جاب سیکر کی بجائے جاب کریٹر بن رہے ہیں. پی ایم مدرا لابھارتھی سمواد کے انش پترکا میں شامل ہیں.
بیتے ایک دشک میں بھارت نے پڑوسی پرتھم اور ایکٹ ایسٹ کی نئی نیتی کے ساتھ سمبندھوں کو نیا وستار دیا ہے. بمسٹیک یعنی بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن کے ساتھ رننیتک بھاگیداری کو خاص بڑھاوا بھی اسی دور میں ملا ہے. دنیا کی قریب 21% آبادی والے 7 دیشوں کے اسی سنگٹھن میں بھارت کو اپنی نیتتو کشمتا سے کشیتری سمردھی کو بڑھاوا دینے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی ہے. کشیتری سہیوگ کے اس خاص منچ کو اور مضبوطی تھائی لینڈ میں آیوجت 6th بمسٹیک شکھر سمیلن میں ملی جہاں پردھان منتری نریندر مودی نے سہیوگ کی نئی دشا میں 21 سوتریہ کاری یوجنا کا پرستاو رکھا جس کی جانکاری پترکا میں شامل ہے. اس کے علاوہ بھارت اور شری لنکا کے گہرے ایتہاسک سانسکرتک اور بھوگولک سمبندھوں پر آدھارت رہے ہیں. سمے کے ساتھ ساتھ رشتے ویاپک ہوتے گئے اور اب اس کا دائرہ ویاپار، سرکشا، سمندری سرکشا، کوٹ نیت اور کرکٹ سے ہوتے ہوئے پرسن ٹو پرسن تک پہنچ رہی ہے. بھارت کے پڑوسی پرتھم کی نیتی اور ویژن مہاساگر میں شری لنکا کا وشیش ستھان ہے. دونوں دیش کے سرکشا ہت سمان ہے اور ایک دوسرے پر نربھر ہے. اپنی چوتھی شری لنکا یاترا میں پردھان منتری نریندر مودی نے ان سمبندھوں کو نئے آیام دیے جن کے بارے میں پترکا پڑھ کر جانکاری لی جا سکتی ہے.
وکست بھارت کے لیے وکست ہریانہ پردھان منتری نریندر مودی کے نیتتو والی کیندر سرکار کا سنکلپ رہا ہے. اس سنکلپ کی سدھی ہریانہ کے لوگوں کی سیوا اور یوواؤں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کیندر سرکار زیادہ سپیڈ اور بڑے پیمانے پر کام کرتی رہی. اسی کڑی میں پی ایم مودی نے سمویدھان نرماتا بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی کے اوسر پر ہریانہ کا دورہ کیا اور راجیہ کو وکاس کی کئی سوگاتیں دی. کیندر کا پریاس ہے کہ ہریانہ کے کسانوں کا سامرتھ بڑھے. ہریانہ کی سرکار اب راجیہ کی 24 فصلوں کو ایم ایس پی پر خریدتی ہے. ہریانہ کے کسانوں کو پی ایم فصل بیمہ یوجنا کے تحت 9,000 کروڑ سے زیادہ کے کلیم بھی دیے گئے ہیں. ساتھ ہی پی ایم کسان سمان ندھی سے 6,500 کروڑ روپے کسانوں کی جیب میں گئے ہیں. ہریانہ کو ملی سبھی سوگاتوں کی جانکاری پترکا میں شامل ہے. وہیں سانسکرتک دھروہر اور ایتہاسکتا کے معاملے میں وشیش تھان رکھنے والے تمل ناڈو کو آدھونکتا کے ساتھ وکاس کی راہ پر تیز گتی سے آگے بڑھانے کے لیے کیندر سرکار نے لگاتار کام کیا ہے. وکاس کی سوگاتوں کی اس کڑی کو پردھان منتری نریندر مودی نے اور آگے بڑھایا جب اپنے ایک دیوسیہ دورے میں انہوں نے تمل ناڈو میں 1,000 کروڑ روپے کی پریوجناؤں کا شلانیاس اور ادگھاٹن کیا. تمل ناڈو کے رامیشورم میں پردھان منتری نریندر مودی نے 8,300 کروڑ روپے سے ادھک کی لاگت والی ریل اور سڑک پریوجناؤں کا شلانیاس کیا اور لوکارپن بھی کیا. انہوں نے تمل ناڈو کو دیش کے پہلے ورٹیکل لفٹ سی برج کے طور پر نئے پمبن ریل برج کی سوگات بھی دی اور ان سبھی پریوجناؤں کی جانکاری یہ پترکا پڑھ کر ली जा सकती है।
संकल्प के सामर्थ्य और 2047 तक देश को विकसित बनाने के जुनून के साथ शुरू हुई नए भारत की यात्रा सिर्फ परिवर्तन भर की एक कहानी नहीं है। ये नीतियों से संभावनाओं के नए द्वार खोलने के साथ भविष्य की मजबूत नींव रखने की यात्रा है। तो इस संकल्प से सिद्धि के मंत्र के साथ आगे बढ़ने की नव आकांक्षाओं को दिशा देने का सफर भी है। नए भारत के परिवर्तन की इसी यात्रा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया संस्थान न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन में किया, जहां देश के युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आपका उत्साह, आपकी सोच और आपकी भागीदारी ही भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प की ऊर्जा है। राइजिंग भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं की इन्हीं आकांक्षाओं का जिक्र किया। तो बीते एक दशक के साथ 2025 के पहले 100 दिन के उन ऐतिहासिक कदमों पे भी बात की जिन्होंने विकसित भारत के दृढ़ संकल्प को और मजबूत बनाया है। राइजिंग भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री क्या बोले, इसे विस्तार से पत्रिका में शामिल किया गया है, जहां आप उनके विचार पढ़ सकते हैं।
लोक जीवन की गहराई में लोक कला की झलक बसी है, जो इसे एक विशेष पहचान और रंग देती है। और ऐसा ही एक रंग है पांडवानी यानी पांडवों की आवाज, जिसमें महाभारत की कहानी बयान होती है। उस कहानी को आवाज देकर इस लोक कला को दुनिया भर में पहचान दिलाने का माध्यम बनी है उषा बार्ले, जिनकी कहानी को इस अंक की व्यक्तित्व की श्रेणी में शामिल किया गया है। देश दुनिया में भरपूर मान सम्मान और नाम अर्जित करने वाली गायिका उषा बार्ले को ये मकाम हासिल करने में बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ा। कहा जाता है कि उषा के पिता को उनका गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं था और ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने अपनी बेटी को कुएं में भी फेंक दिया था ताकि वो डर कर गाना छोड़ दें। ये अलग बात है कि उषा ने परिस्थितियों से कभी हार न मानी और कृत संकल्पित रही। पंथी, लोक संगीत, भरथरी सहित कई गायन विधाओं में निपुण माने जाने वाली उषा बार्ले पंडवानी गाने में ज्यादा दक्ष मानी जाती हैं। उषा बार्ले इस कला से बच्चों को भी सींचने का काम करती हैं, साथ ही वो इस कला को हमेशा जीवित रखते हुए भारतीय कला को बढ़ावा देना चाहती हैं। जब राष्ट्रपति भवन में उषा बार्ले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तब वो अपनी परंपरा और संस्कृति को समेटे सम्मान लेने पहुंची। शुभ कार्य से पहले पैरों में चप्पल की बजाय आलता लगाए वो नंगे पैर ही राष्ट्रपति से सम्मान लेने आगे बढ़ी। समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में जब उनका नाम लिया गया, तब पुरस्कार लेने से पहले वो जमीन पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झुककर उनके अभिवादन का उत्तर दिया था। उषा बार्ले को पद्मश्री के अलावा कई अन्य सम्मानों से भी नवाजा गया है।
11 मई का दिन भारत के इतिहास में सबसे गौरवमय दिनों में से एक है। आज के दिन भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। पोखरण की तपती रेत पर इतिहास की मिट्टी में जब एक वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वप्न बोया और एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहस से उसे सींचा, तब भारत ने सिर्फ एटमिक परीक्षण ही नहीं किया बल्कि आत्मनिर्भरता का बिगुल भी बजाया।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा
और मैं विनीता।
दीजिए इजाजत।
नमस्कार।